बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे चाहे दिन हो चाहे रात।
ओम शांति। योग की ऊंची स्थिति बनाने के लिए मन जीत स्थिति बनाना, ब्राह्मण जीवन में बाबा का हमें इशारा मिलता रहता है कि समय के अनुसार आवश्यकता है, योग की ऊंची स्थिति बनाना अर्थात शक्तिशाली स्थिति बनाना। बाबा ने कहा है साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। तो ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए योगा की ऊंची स्थिति बनाने के लिए मन जीत स्थिति बनाना अति आवश्यक है। मन जीत बनना अर्थात मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन करना, मन जीत बनना अर्थात स्वयं के राजे बनना। जो स्वयं का राजा बनता है वो स्वतः ही भविष्य में औरों का राजा बनता है। तो जिन आत्माओं के पास बहुत अच्छी मन पर नियंत्रण करने की और अनुशासन करने की शक्ति होती है वो भविष्य में राजा महाराजा स्वतही बनते हैं। तो मन जीत स्थिति से हम संगम युग में योग की ऊंची स्थिति बनाने में सफल होते हैं। दूसरी बात है अंतिम पेपर में भी अच्छी तरह से पास होते हैं। तो मन जीत बनने के लिए मन के बारे में पांच बातें हमें बुद्धि में रखनी है और उन पांच बातों का प्रयोग जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे हमारी मन जी स्थिति आगे बढ़ती जाती है। पहली बात है सदा समझे मैं आत्मा मन का मालिक हूं। द्वापर युग से आत्मा की विस्मृति होने के कारण मन अपनी मनमानी करता रहा और आत्मा को अपने इशारे पर चलाता रहा। लेकिन बाबा ने जब हमें यथार्थ स्मृति दी कि आप आत्मा राजा हो, मन बुद्धि कर्मचारी आपके हैं, तो जब हम ऊंची शान में रहते हैं स्वमान में रहते हैं तो स्वतः ही मान और बुद्धि रूपी कर्मचारी हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, हमारे नियंत्रण में रहते हैं। दूसरी बात सदैव समझें कि मन एक बच्चे के समान है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती हैं कि बेटा ये आग है, इसको आंत लगाने से हाथ जल सकता है, बाजू में खड्डा है वहां जाने से चोट को मिल सकती है, तो ऐसे हम आत्मा रूपी जो माँ है मान रूपी बच्चे को बड़े प्यार से समझाएं, हे मन अगर तुम माया के संग में रहोगे तो मेला बन जाओगे, इसलिए माया से सदा दूर रहना और सदैव परमात्मा के संग में रहने के लिए याद की सीढ़ी जीन की तरह चढ़ते और उतरते रहना। जब भी कार्य करना होगा उस समय नीचे आते रहना। ऐसा हम बड़े प्यार से मन को समझाते रहें तो मन हमारी इशारे के अनुसार चलने लगता है। तीसरी बात है मन घोड़े के समान है। जैसे घोड़े पर हम बैठते हैं और उसकी लगाम हमारे हाथ में पक्की पकड़ कर रखते हैं तो घोड़ा हमें अपनी मंजिल पर सुखरूप रीति से सुचारू रीति से पहुंचाता है। ऐसे मान रूपी घोड़े पर आत्मा जब सवार होती है तो बुद्धि रूपी लगाम अटेंशन की मुट्ठी में अच्छी तरह से पकड़ती है तो मान रूपी घोड़ा हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाता रहता है और हमारे नियंत्रण में रहता है। वास्तव में बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। बुद्धि जहां दौड़ती है वहां मन स्वतः ही दौड़ता रहता है। चौथी बात है सदैव समझे मन मेरा मित्र है। जब हम अपने मित्र के साथ प्यार की बातें करते हैं, दिल के समाचार की लेन देन करते हैं तो वो हमारा सहयोगी बनता है और हमें पूरा सहयोग देता रहता है। ऐसे मन को हम मित्र समझें और बड़े प्यार से उसके साथ बातें करें। हे मन कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक ठाक हो, तो ऐसे कोई बातें करते समय उसका समाचार लेते रहें और मन रूपी मित्र को सदा हल्का रखें, शांत और शीतल रखें तो मन हमें बहुत सहयोग देता रहता है, मन हमारी मानने लगता है। पांचवी बात है सदैव समझे मन मेरी रचना है, मैं आत्मा रचता हूं। रचना हमेशा रचता के इशारे पर चलती हैं, रचना मुझे नहीं चलाएं, लेकिन रचना मेरे आज्ञानुसार चलें। तो जब हम स्वयं को कमांडर समझते हैं तो मन हमारी ऑर्डर मानने लगता है, हमारे इशारे पर चलता है, और मन जिस स्थिति हम अनुभव करते जाते हैं। वास्तव में बाबा ने हम सभी को संगम युग में बहुत अच्छी याद की फैक्ट्री दी है। उस फैक्ट्री का ओनर है आत्मा, उस फैक्ट्री का मैनेजर है बुद्धि, और उस फैक्ट्री पर काम करने वाला कर्मचारी है मन। जब मन उस याद की फैक्ट्री में मन मनाभाव का मंत्र जाप करने का काम करता रहता है तो उस फैक्ट्री का इनकम एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है। इतना इनकम कराने वाली फैक्ट्री दुनिया में कोई भी नहीं है जो बाबा ने हम सभी को संगम युग में दी है। इसलिए मन मना भाव अर्थात बाबा कहते हैं मन को मेरी याद में मनाओ, मेरी याद में रिझाओ, मेरी याद में रमण कराओ, मेरी याद में लगाकर रखो। तो मन मनाभाव के मंत्र से हमारी बड़ी भारी कमाई होती रहती है। लेकिन योग की ऊंची स्थिति बनाने के लिए मन के साथ बुद्धि भी कार्यरत रहती है। इसलिए इन दोनों शक्तियों के बारे में अगर हमारे पास विस्तृत जानकारी है तो योग की ऊंची स्थिति बनाने में हमें सफलता मिलती जाती है। तो अनुभव के आधार से मैं ये कहना चाहूंगा कि मन और बुद्धि के बारे में 5 बातें हैं। वो 5 बातें अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो आपकी स्थिति परिपक्व बनती जाएगी। पहली बात है मन हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो, ऐसा मन मन मनाभाव का अजापा जाप करता रहता है, कभी थकता नहीं है। बुद्धि हमारी कैसी हो, बुद्धि बहुत एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। ऐसी एक्टिव अलर्ट और फ्रेश बुद्धि योगाभ्यास में निरंतर कार्यरत रहती है, कभी भी थकती नहीं है। दूसरी बात है जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, आत्मा शक्तियों का पुंज है, तो कौन सी शक्ति को मन कहते हैं और कौन सी शक्ति को बुद्धि कहते हैं, ये हमारे पास क्लियर होना जरूरी है। तो सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, और देखने और निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। तो एकांत में बैठकर हमें ये अनुभव करना है कि कौन सी मेरी शक्ति देखने वाली है और कौन सी शक्ति सोचने वाली है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने मधुबन में शांति स्तंभ देखा है, तो पूछते ही शांति स्तंभ का पिक्चर आपके सामने आ जाता है और आप सोचने लगते हैं कि शांति स्तंभ जो है ब्रह्मा बाबा के साकार रूप में स्थिति की यादगार है। तो इसमें जो देखने वाली शक्ति है वो बुद्धि है और जो सोचती है वो शक्ति है मन, क्योंकि हमें मन जीत बनना है। उसके लिए कौन सी शक्ति मन है ये बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना जरूरी है, फील करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, मन बुद्धि दोनों साथ साथ रहती हैं, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इस संबंध को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं मन जीते जगत जीत बनते जाना, लेकिन मन जीत बनना इतना सरल नहीं है। मन जीत बनने के लिए पहले बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है। मन केवल बुद्धि का फॉलोअर है। अगर हम बुद्धि को किसी विशेष बात पर एकाग्र करते हैं तो मन हमारा अपने नियंत्रण में रहता है और उसी बात पर विचार करने लगता है और मन जीत स्थिति की अनुभूति हम करते जाते हैं। चौथी बात है, योगाभ्यास में इन दोनों शक्तियों का प्रयोग कैसे करते रहें। जब हम योग में बैठते हैं सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्रों को परम धाम में शिवभाव पर एकाग्र करें या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिवभावा पर एकाग्र करें। जितना देर तक बुद्धि बाबा को देखती है उतना देर तक मन बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुणों के प्रति स्वतः ही सोचता रहता है। जब बुद्धि वहां से हट जाती है, भटकने लगती है, तो टूटा हुआ कनेक्शन हमें एक सेकंड में जोड़ना होगा। तो उसकी बहुत सरल विधि है, बुद्धि रूपी नेत्र को हमें चेक करना है और देखना है बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ भटक चुका है, वहां चेक करके बाबा पर बिठाते रहें। तो चेक करना, चेंज करना, ये अभ्यास इतना हमारा बढ़ता जाता है उतनी एकाग्रता की शक्ति योगाभ्यास में हमारी बढ़ती जाती है। तो ऐसे इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में हमें यूज करना है, क्योंकि बुद्धि बाबा से कनेक्शन जोड़ने का काम करती हैं और मन करंट लेने का काम करती हैं। संकल्प के माध्यम से आत्मा में शक्तियों का करंट आने लगता है और आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली बनती जाती है। आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी को तेजी से चार्ज करना अगर है तो उसके लिए आवश्यकता है मन में शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करते रहना। बहुत शक्तिशाली संकल्प और सकारात्मक संकल्प करते रहना, जैसे कि जब हम स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा समझते हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा समझते हैं, तो ज्ञान सूर्य बाबा से बहुत शक्तियां आत्मा में भरने लगती हैं। और पांचवी बात है, मन और बुद्धि को सारे दिन भर में माया दुश्मन से हमें सेफ रखना है, क्योंकि यह राज हमारा नहीं है, दुश्मन का राज है। इसलिए सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे का कवच अगर हम पहन कर रखते हैं तो माया दुश्मन से सेफ रहते हैं। माया दुश्मन अगर मन बुद्धि पर वार भी करती है तो भी मन बुद्धि सेफ रहती है। योग की ऊंची स्थिति बनाने के लिए हमें तीन बातों पर विशेष अभ्यास करना जरूरी है। पहली बात है, ऊंची योग की स्थिति बनाने के लिए खुद में खो जाना सीखते चलें। स्वयं को दिव्य नेत्र से आत्मा देखकर उस आत्म अभिमानी स्थिति में खो जाने का अभ्यास करें। जितना जितना आत्मा को देखने का परसेंटेज बढ़ता जाता है और उसमें स्थित होने का समय बढ़ता जाता है, उतना आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई बढ़ती जाती है। जब हम खुद में खो जाते हैं, एकदम समा जाते हैं, तो आत्मा ज्योति बिंदु का भान हमें स्पष्ट अनुभव होने लगता है और देह का भान मिटने लगता है। देह का भान गलता जाता है, देह का भान मिटता जाता है। इसलिए जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, ऐसे स्वयं को इस धरती पर विराजमान एक मैं आत्मा रूपी चैतन्य सितारा हूँ और दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूँ, ऐसा सुंदर अभ्यास स्वमान के साथ करें। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, ऐसा जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं, ईश्वरीय नशे का बहुत सुंदर अनुभव हमें होता है, बहुत मन हमारा खुशी में झूमने लगता है, तो आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव सुंदर अनुभव होता है। दूसरी बात, खुदा में खो जाना सीखें। खुद को जितना जानते हैं उतना ही हम खुदा को जान सकते हैं, जितना खुद का दर्शन करते हैं उतना ही खुदा का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे बाबा को परमधाम रूपी पीस पैलेस में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में देखें और बहुत सुंदर उनके स्वरूप को हम निहारते रहें, उनकी सुंदरता का आनंद लेते रहें, क्योंकि जैसे पूर्णिमा के दिन चकोर चंद्रमा को देखता है और झूमता रहता है, ऐसे हम आत्मा सूरजमुखी फूल बनकर ज्ञान सूर्य को देखते रहें, निहारते रहें, उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद लेते रहें और हमारा दिल अंदर ही अंदर गाता रहें, तो सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पियाम, तो सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पियाम, न देखो तुझे तो खिले न ये जिया, एक पल भी मैं आपको नहीं देखती हूँ तो मेरा जिया खिलता नहीं, मेरा जिया लगता नहीं। तो ऐसे खुदा में हम खो जाना सीखें। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात है, स्वयं को आत्मा समझकर उस परमात्मा से कैसे प्यार करें। योगाभ्यास करना अर्थात परमात्मा से दिल से प्यार करना। लेकिन आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना, इसके लिए हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि हमारा प्यार इस दुनिया में किससे होता है, हमारा प्यार जो बहुत सुंदर होता है उससे होता है, इसलिए तीनों लोगों में सबसे सुंदर केवल एक ही बाबा हैं और उनके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है, क्योंकि सुंदरता का कनेक्शन पवित्रता के साथ होता है। बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, सुंदरता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाते हैं, जो आत्माओं पर अपवित्रता के काले धब्बे हैं, काले दाग हैं, उन्हों को भी मिटाते हैं। दूसरी बात, प्यार उससे होता है जिसके पास बहुत खजाने होते हैं, बहुत माल होता है। तो तीनों लोगों में बाबा से बढ़कर और कोई भी नहीं है जिसके पास इतने अखूट खजाने हो। बाबा तो खजानों का सागर है, बाबा तो अखूट भंडार है, सारे संसार की आत्माओं को खजाने बांटते ही रहते हैं, बांटते बांटते कभी थकते ही नहीं हैं। इसलिए जो प्राप्तियों का भंडार है, सर्वरसों का भंडार है, उससे हमारा प्यार बढ़ते रहना जरूरी है। तीसरी बात है, प्यार किससे होता है? प्यार उससे होता है जो शक्तिशाली होता है, क्योंकि हर कोई इस संसार में अपनी सुरक्षा चाहता है, अपनी सिक्योरिटी चाहता है। परमात्मा तो विश्व रक्षक है और शक्तियों का सागर है। सारे संसार की आत्माओं को शक्तियां बांटते हैं, उनके जैसा शक्तिशाली और उनके जैसा रक्षक कोई भी नहीं है। इसलिए हमारा उनके साथ प्यार बढ़ते रहना चाहिए। चौथी बात, प्यार उससे होता है जो प्यार करके निभाना जानता है। दुनिया में प्यार करके धोखे देने वाले बहुत हैं। बाबा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राज हैं। अगर हम दिल से परमात्मा से प्यार करते हैं तो साहब सदा राजी रहते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे यूज करो, 24 घंटे में आपके सेवा में हाजिर हूँ। बाबा ने पिछले वर्ष तो यहाँ तक कह दिया है, कोई भी आत्मा मुझे दिल से बाबा कह के पुकारे तो 1000 भुजा वाला हजूर 1 सेकंड में हजूर होगा। ये बाबा ने प्रॉमिस किया है। इसलिए बाबा को हमें बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। इस दुनिया में सदा साथ देने वाले बहुत लोग कम हैं। सदा साथ देने वाला एक ही बाप है। लोग थोड़ा समय के लिए साथ देते हैं, सुख में तो साथ देते हैं, दुख में कोई भी साथ नहीं देता है। लेकिन परमात्मा सदा साथ देने वाले हैं, प्यार को निभाने वाले हैं। इसलिए उनके साथ हमारा प्यार बढ़ते रहना जरूरी है। लेकिन एक बात हमें समझना है, जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार जुट जाती है। इसलिए बाबा से हमारा जिगरी प्यार होता है, क्योंकि वही हमारा दिलवर है, वही हमारा रहवर है, वही हमारा हम सफर है। उसके साथ ही हम दिल का समाचार की लेन देन करते हैं, तो उससे हमारा जिगरी प्यार है। हमारे दिल में, जिगर में, धड़कन में, रगों में उसका ही प्यार सदा समाया रहे, तो हमारी बुद्धि रूपी तार उसके साथ सदा जुटी रहेगी। लेकिन जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार जुटी रहती है। अगर अटूट प्यार हमारा बाबा के साथ होता है तो अटूट तार बुद्धि की बाबा से जुटी हुई रहती है। इसलिए हम बाबा को अपना संसार अनुभव करें और बाबा ही बाबा हमारे दिल के दुनिया में अनुभव होता रहे। जितना प्यार उतनी देर बुद्धि की तार हमारी जुटी रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, बुद्धि रूपी तार मेरी दिव्य बुद्धि विधाता बाप से सदा जुटी रहे। बाबा ने कहा, आपके तीसरे नेत्र में मैं और बाबा दो के बजाय अगर तीसरा कोई आ जाता है तो तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमारे तीसरे नेत्र में मैं और बाबा दो ही रहूं और उसके प्यार में मैं आत्मा सदा समाई रहूं। तो आप देखेंगे मन बहुत मस्ती से खुशी से झूमता रहेगा और मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं ब्राह्मण जीवन में मन मना भाव का मंत्र का जाप करते करते कभी थक जाते हैं, कभी कभी बोर भी अनुभव करते हैं। उसका कारण क्या है? मध्याजी भाव का मंत्र हम जाप करना भूल जाते हैं। जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के पहले देखते हैं मुझे इससे क्या मिलेगा, तो मन मनाभाव के मंत्र से मध्याजी भाव की प्राप्ति अर्थात 21 जन्मों के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है, ये हम भूल जाते हैं। उसके कारण मन मनाभाव का मंत्र का जाप करना थोड़ा ढीला हो जाता है, इसलिए बीच बीच में मध्याजी भाव के मंत्र को भी जाप करते रहें, तो मन निरंतर अथक बनकर ये मन मनाभाव का जाप करता रहेगा। तो अभी हम बहुत सुंदर रीति से मन मनाभाव का जाप करने के लिए याद की यात्रा का सुंदर अनुभव चंद घड़ियों के लिए करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, ऐसी सुंदर अनुभूति करेंगे जो यादगार के रूप में आप अपने साथ रखेंगे। तो चले हम सभी याद की यात्रा पर। ओम शांति। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों सुंदर आभा मंडल, सुंदर लाइट का औरा अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ज्योति ने धारण किया है। मैं पवित्र स्वरूप चैतन्य ज्योति देह रूपी दीपक से न्यारी होकर उड़ती हुई ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ। इन पांच तत्वों से पार नीले आकाश से भी पार जा रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर न्यारी निराली दुनिया है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड प्यारे शिव पिता भी उनके ब्रोकटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता अथाह शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करते ही जा रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। आहा, ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ। कितना सुंदर है यह दिव्य ज्योति धाम। चारों सुनहरी लाल हिला दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता को निहार रही हूँ, उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा हैं, बाबा ही बाबा हैं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा बिंदु एकदम स्वयं को लाए और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी दीपक में, देहरूपी दीपक में मैं शक्तिशाली आत्मा रूपी ज्योति विराजमान हो गई हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा रूपी ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगें चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रहे हैं, वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही हैं। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे में उनकी संतान आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।